आज हम चर्चा करेंगे योग पर, क्योंकि बाबा जो हमें काम देकर गए हैं, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, क्या बनो, निर्विघ्न, याद है ना? तो हम निर्विघ्न जीवन बनाने के लिए श्रेष्ठ योग का प्रयोग करेंगे। मैं एक आत्मा के अनुभव से शुरू करता हूं। अभी चार दिन पहले उसने मुझे कहा, मेरे पास ये है समस्याएं। मैंने उसे कहा, देखो भाई, एक एक समस्या का तो हल कोई नहीं कर सकेगा, तुम अपना योग का चार्ज चार घंटे करो। ज्ञान सरोवर में रही वो कुछ दिन, उसी दिन से मैंने कहा, अभी से जाओ चार बार तो बाबा के रूम में बैठो, 15-15 मिनट, अमृत वेले अच्छा योग करना, शाम को अच्छा करना, और कम से कम एक घंटा दिन में कर्म योग हो जाना चाहिए। उसने किया और इतने आनंद से अगले दिन मेरे पास स्वतः ही आ गई, आनंद हुआ उसको, और बताया मेरा सब ठीक हो गया। ये कभी चार दिन पहले का अनुभव, जबकि उसकी समस्याएं सुन के ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। एक ही दिन में सुखी हो गई। तो पहली चीज है, मैं आप सभी से पूछूंगा, कौन कौन अपने योग से संतुष्ट हैं? हाथ उठाओ। बहुत हैं, बहुत अच्छी बात है। कितना कहते हैं बाबा योग लगाओ, हैं? 8 घंटे। तो धर्मराज भी क्या करेगा, फिर ऑनर देगा, सम्मान देगा, क्योंकि उससे सभी विकर्म नष्ट हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात पहले हम अपने चिंतन में लाएंगे। सब जानते हैं, जिस चीज का हमें अच्छी तरह महत्व मालूम हो उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। डॉक्टर ही कह दे ये गोली खा लो रोज, एक रात के 1 बजे खाना, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, तो हम खाएंगे ना 1 बजे भी उठ के, क्योंकि उसके महत्व का हमें ज्ञान है। हमें अपने जीवन को योगी जीवन बनाना है, और तीव्र पुरुषार्थियों में कम से कम योग होना चाहिए 4 घंटे, ये सबसे नीचे की रेंज, उसके ऊपर ही होना चाहिए, अन्यथा वो तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तो हम आज चर्चा करेंगे कैसे हमारे योग का चार घंटे से ज्यादा रहे, योगियों के लिए धारणाएं क्या जरूरी हैं, क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, परंतु पहले है योग का महत्व। और उसमें मैं पहले 2 चीजें आपको बताता हूं, 2-3 आप चिंतन करेंगे। बाबा कहते हैं, ज्ञानी आत्माएं मुझे बहुत प्रिय हैं, और योगी आत्माएं वो तो मानो मेरा ही स्वरूप हैं। प्रिय तो हैं ही, पर मैं और वो जैसे एक ही हैं। दूसरी बात, बहुत प्रेरक बात है ना जीवन के लिए। दूसरी बात बाबा की ही बात है, जो योग युक्त रहते हैं वे तो मानो मेरे सम्मुख रहते हैं वतन में। सभी इस पर अटेंशन दें, योग युक्त रहना माना बाबा के सम्मुख रहना। और तीसरी एक बहुत सुंदर बात है, उसकी सुंदरता को हरेक अपनी अपनी स्थिति से रियलाइज करे। जो योगी युक्त ज्यादा हैं, वो जैसे भगवान की केयर में हैं। समझते नहीं भाषा, भगवान उनकी केयर करता है, उन पर ध्यान रखता है। जैसे बाबा ने कहा है, आप में से किसी ने कैच किया हो, नोट किया हो, जो अश्वतन है उन पर बाबा की सदैव नजर रहती है, कैसे चल रहे हैं। बाबा ने कहा, अचानक बाबा उन्हें देखता है नीचे, क्या हैं, किस स्थिति में हैं, क्या कर रहे हैं, है ना ये बात। ऐसे ही जो अच्छे योगी और भी हैं, वो भगवान की केयर में रहते हैं, उनकी संभाल वो स्वयं करता है। बहुत सुंदर बात हो गई ना। और क्यों करता है? क्योंकि वो उसका इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। इसलिए साकार मुरली का एक महावाक्य सब अपने अंदर समा लें, जो आत्माएं 8 घंटे मुझे याद करते हैं, वो स्थापना के कार्य में सबसे अधिक सहयोग देते हैं। जो योगी हैं वही मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा संसार में पवित्रता, शांति और शक्तियों की किरणें फैलती हैं। सभी इस बात को ख्याल में रखेंगे, जितना हमारा अच्छा योग है उतना ही परमात्म कार्य में हमारा सहयोग है। भगवान को कोई सहयोग देगा तो क्या होगा? जन्म जन्म द्वापर के बाद क्या होगा? हाँ, लगेगा उन्हें भक्ति में कि भगवान हमारी सुनता है, सहयोग आएगा तुरंत। ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान सुनता नहीं है, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और बाबा ये बात कह भी आए हैं, मैं भक्ति में भी तुम्हें सहयोग देता आया हूँ। तो बहुत बड़ी हमारी सेवा हो जाती है योगयुक्त होना। तो योगी भगवान को इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वो उसका महान कार्य करते हैं। हम अपने योग के वाइब्रेशंस ऐसे फैलाएं, हमें एक्चुअली फैलाने की भी जरूरत नहीं। एक तो परपजली हम फैलाएंगे, लेकिन दूसरा है हमारा योग युक्त रहना ही वाइब्रेशंस फैलाना है। कहीं आग जल जाए तो गर्मी आपे ही फैलती है ना। अग्नि को अपने को फैलाने की जरूरत नहीं। आग जली, उसके सूक्ष्म तरंगे चार ओर फैलेंगी और दूर दूर तक वातावरण में गर्मी हो जाएगी। तो हम ऐसे वातावरण, ऐसा वातावरण बनाएं कैसा, सोचो आप। एक बहुत सुंदर बात है आपके सामने, और जो बाबा के इस कार्य में मदद करना चाहते हैं वो ये काम अवश्य करेंगे। संसार में आजकल किस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं अच्छे लोग? जो दुनिया में आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है? बलात्कार के बहुत सारे केस रोज हैं ये, और ये बढ़ते जा रहे हैं, किसी से कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए, और ये इतने बढ़ जाएंगे कुछ समय में कि संसार में भय व्याप्त हो जाएगा। क्या करेंगे हम? हम ऐसे प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं योग से, ताकि जो ऐसे क्रूर लोग हैं, हैं? अखबारों में भी इनके लिए गलत गलत शब्द आते हैं ना, कोई इन्हें राक्षस कहता है, कोई भेड़िए कहता है, हैं ही वो तो मानव रहे नहीं। तो जो ऐसे मानव नहीं रहते हैं, क्या हो उनको हमारे वाइब्रेशन से, कि उनके इस तरह के संकल्प स्वतः ही शांत हो जाएं। और ये प्योर वाइब्रेशन से होगा कि अगर वो कुछ करना भी चाहें तो ये वाइब्रेशंस उनको करने न दें। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है। तो एक और कलयुग का अंधकार गहरा होता जाएगा, विकार फुल फोर्स से दिखाई देंगे चारों ओर। दूसरी ओर हमें अपने प्योर वाइब्रेशंस फैलाकर इसके वेग को रोकना होगा। ये काम हमें करना है। हम जानते हैं ये कलयुग का अंत आता जा रहा है, इसमें अंधकार और गहरा होता जाएगा, विकार और प्रकोप में आते जाएंगे, लेकिन उनके वेग को हमें रोकते रहना है। हम विनाश को बंद नहीं कर सकेंगे, वो तो प्लानिंग है, लेकिन हम उसमें आत्माओं को मदद अवश्य करेंगे। किसी ने पूछा ये प्रश्न कि हमारा वाइब्रेशंस फैलाना क्या परमात्म कार्य में अवरोध पैदा करना नहीं है? किसी ने, जो ज्यादा सोचते हैं ना कि हम प्रकृति को वाइब्रेशंस देते हैं, उसे पवित्र बनाते हैं, प्रकृति को विनाश करना, हम उसे रोकना चाहते हैं, ये क्या गलत नहीं है? एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, वो मरने तक जा रहा है, डॉक्टरों को पता चल रहा है इसको ये जिंदा नहीं रह पाएगा, फिर भी डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर साहब लास्ट तक करते हैं ना अपना प्रयास, कम से कम वो मरे भी तो सहज तो देह छोड़े। तो हमें अपने प्रयासों को बंद नहीं करना है। चलो अब हम चिंतन करेंगे सभी, योग का और क्या क्या महत्व है, क्या क्या होगा योग से? बोलो, बहने बोलेंगी पहले, हाथ उठा के थोड़ी आवाज से। आयु बढ़ेगी, अब वर्तमान का ध्यान दें, संस्कार बदलेंगे, हाँ विकर्मों के जो प्रिंट्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे, साथ में विकारों के भी। आज की मुरली में भी था ना वरदान या स्लोगन में, तो विकारों पर भी हमारी सहज विजय होगी, संस्कार भी योग बल से सहज बदलेंगे। भाई बताएं, योग अग्नि से ये सब विकार जलाए जाएंगे, बीज को नष्ट किया जाएगा योग अग्नि से। बोलो आगे वाले हैं? हाँ, एक है बीमारी नहीं आएगी और दूसरा है अगर आएगी तो योग बल से कष्ट कम से कम होगा, योग बल से पीड़ा की फीलिंग नहीं होगी। बाबा के जो बहुत अच्छे योगी बच्चे अब तक गए हैं कई बीमारियों से भी, उनके ये अनुभव रहे हैं कि बीमारी होते भी देखने वालों को ये लगता है इन्हें बहुत कष्ट है, लेकिन उन्हें कष्ट नहीं होता। तो बाबा ये बात कहते थे, जो इष्ट हैं उन्हें कष्ट नहीं होता है। तो योग का ये प्रभाव रहता है कि कष्ट और पीड़ा की फीलिंग नहीं होती। और बोलो हैं? आयु बढ़ेगी। कलयुग में ज्यादा जीना अच्छा है, संगम युग में अच्छा है, सेवा करते रहेंगे। बीच वाले भाई बोले, घर मंदिर हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है, सुनाओ आप अच्छी अच्छी बातें। हमारा घर महान तीर्थ बन जाएगा, इतना ही नहीं जो योगी हैं, बाबा के महावाक्य याद करो साकार के, योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस, याद है ना, योगी स्वयं ही महान तीर्थ होंगे, उनके वाइब्रेशन से बहुतों का कल्याण होगा, उनकी दृष्टि से बहुत कुछ पवित्र होगा। आगे आने वाले समय में तो वाइब्रेशन से और दृष्टि से ही बहुत काम होना है। और किसी को कुछ ख्याल आ रहा है? अर्जुन भाई, हाँ, कर्म भोग सूली से कांटा हो जाएगा अभी के बाबा के महावाक्य, बोलो है? चेहरा केवल खुश नहीं, चेहरे पर एक अलौकिक आकर्षण होगा, आत्माएं बाबा की ओर आकर्षित होंगी, वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, बहुत अच्छा, समस्याओं का सब समाधान हो जाएगा, अनेक समस्याएं तो पास आएंगी ही नहीं। और भी सोचो, बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि डिवाइन होगी, ये बहुत बड़ा फायदा होगा, कार्यों में सहज सफलता होगी, कार्यों में अगर विघ्न भी आ रहे होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। मैं आप सबको फिर से याद दिलाऊं, जिसकी प्रैक्टिस सभी को चालू रखनी है, मुझे इसके बहुत अच्छे अनुभव उस दिन से हो रहे हैं जब से बाबा ने कहा था अभी अभी। क्या? कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले बाप से सफलता का वरदान लो। मैं प्रैक्टिस तो करता था पर उस दिन से ये बात बिल्कुल अंदर चली गई। चाहे छोटा सा ही कार्य करने जा रहे हो, बाबा का हाथ सिर पर और बाबा वरदान देते हैं बच्चे सफलता मूर्त भव। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बहने ख्याल करेंगे ना इसमें सभी सभी। खाना भी बनाओ ना घर में, सफलता का वरदान ले लो। खाने में भी तो चाहिए हाथ न जले, नहीं तो कुछ ना कुछ जल जाता है। खाना टेस्टी बने, खाना कम न हो, जितने आए सब खा के तृप्त हो जाएं, है ना। ये सब हर कर्म में वरदान चाहिए। आपको कहीं क्लास करानी है, सफलता का वरदान लो। कुछ लिखना है, मनन करना है, सफलता का वरदान लें। अपने अपने डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं, शुरू करने से पहले सफलता का वरदान ले लें, इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाता है। सहज योग माना सहज जीवन। तो हमें अब लक्ष्य बनाना है कि अपने योग को 4 घंटे से ज्यादा करें, और जिनका 4 घंटे नहीं है वो 1.5 घंटे से शुरू करें। वैसे तो सबका बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन जिनको कठिनाई है वो भले ही 1.5 घंटे या 1 घंटे से प्रारंभ करें। अब हम चिंतन करेंगे सहज योग करने के लिए कौन कौन से अभ्यास हमें बहुत मदद करेंगे। बोलो कौन से अभ्यास बाबा की मूल्यों में जो प्राय आते हैं और उन पर हमें बहुत ध्यान देना है। रामू मुरली नायब, एक आत्मभिमानी, दूसरा पहले दो ही चीजों पे अटेंशन देंगे, दूसरा नहीं ऐसा दीदी वही हो गया आत्मिक दृष्टि। दो प्रैक्टिस, जिसको सहज योगी बनना है पहले वे दो प्रैक्टिस करें। इसकी धुन लगा दें, इसकी धुन आप पहले 21 दिन लगाएं। हम ज्यादा लंबा समय नहीं करेंगे, 3 मास नहीं, 21 दिन। और 21 दिन में रोज 10 बार मैं आत्मा अलग ये देह अलग, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। आत्मा की अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम सब के पास आजकल बहुत ब्राह्मणों के पास ट्रैफिक कंट्रोल बजता ही है किसी के मोबाइल में, घरों में। जिनके पास नहीं है वो अपने घरों में इंतजाम करें माताएं, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे हर घंटे में, मिलता है ना मेमोरी कार्ड, क्या चीज मिलती है, हाँ मिलता है ना, यहाँ पर लेके अपने अपने पास रखें। और हर घंटे ये सहज साधन हो जाएगा, रिमाइंडर हो गया, हर घंटे ऐसा दीदीपन का अभ्यास करें। पूरा मोबाइल ही देते हैं ना, पूरा मोबाइल ही, उसमें सब कुछ भरा हुआ है। तो एक ये अभ्यास, और दिन में ऐसे ही कम से कम 5 बार आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। 5 बार माना, मान लो हमने संकल्प कर लिया, आप अपने डिपार्टमेंट में पहुंचे जो कार्य कर रहे हैं, 9 बजे आप पहुंचे हॉस्पिटल में और आपके साथ 2-4-10 लोग हैं, एक नजर में ये सब आत्माएं हैं चमकती हुई ज्योति, ये एक प्रैक्टिस हो गई। मान लो आपके सामने कोई नहीं है तो आप विजुअलाइज करेंगे संसार में सभी आत्माएं हैं चमकती हुई ज्योति हैं, इससे संभाव आ जाएगा, सुभाव आ जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा, अनेक चीजें इससे ऑटोमेटिक हैं। नहीं तो संभाव लाने में और सुभावना लाने में, प्रेम बढ़ाने में आत्माओं को बहुत मेहनत पड़ती है, कहीं कहीं बढ़ता ही नहीं। लेकिन आत्मिक दृष्टि एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है और मैंने इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, वो बहुत साल पहले बाबा के एक महावाक्य से समझी। तब हमें ये वाइब्रेशंस देना वेना इसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा एक शब्द बोला करते थे साकार में, करंट दो। बाबा की एक बहुत अच्छी बात थी कि जब कोई बच्चा बाप को अपनी गलती कमजोरी सुनाता है तो बाबा सवेरे सवेरे उसे करंट देते हैं, इसकी ये कमी भरपूर हो जाए, भर जाए। तो एक करंट शब्द युद्ध किया जाता था। तो महावाक्य आया, जिसको भी तुम आत्मा देखते हो मानो उसको तुम करंट देते हो। आज की हमारी लैंग्वेज में हम दूसरों को आत्मा देखेंगे, अर्थात हमारे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। घरों में रहने वाले ध्यान दें, ऑफिसों में काम करने वाले भी ध्यान दें। आत्मिक दृष्टि दूसरों को अलौकिक वाइब्रेशंस का अनुभव कराएगी। 5 बार कम से कम, बढ़ा भी सकते हैं 8 बार कर लें। सभी आत्मा देखने की प्रैक्टिस करें। यहां बैठे मान लो हम देखते हैं संसार में करोड़ों आत्माएं ज्योति बिंदी चमक रही हैं, तो हमसे उनको सुंदर वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। अगर दैहिक दृष्टि है तो ये वाइब्रेशंस रुक गए, फिर देह के वाइब्रेशंस हमें आएंगे जो इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे। इसलिए अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, दो चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। ऐसी ही दो सुंदर धारणाएं ले लें जिनको लेकर हम चलेंगे। दो तो बहुत कम हैं, निकालें आप। कौन बन सकते हैं योगी? अब पॉइंट बहुत निकल जाएंगे। साक्षी दृष्टा है, लेकिन हम 2-3 ही लेंगे ताकि सबको इजी लगेगा। 3 ले लेते हैं। पहली, जो स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखते हों, ये अपने हाथ में है। कईयों को अपने को व्यर्थ में ले जाने का संस्कार होता है। चारों ओर देखना, कौन क्या कर रहा है, अपने पे नजर नहीं, सदा दूसरों पे नजर, कहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इनका पुरुषार्थ अच्छा भी है या नहीं, आए थे अपने को देखने, देखने लगे दूसरों को, यहाँ बहुत गड़बड़ हो रही। जिसे अपने योग के चार्ट को तेजी से बढ़ाना है, व्यर्थ से आंखें कान बंद कर लें, कान भी बंद करने पड़ेंगे। पसंद है? मैं पूछूंगा नहीं, पर 8 घंटा योग करने वाले हमारी सभा से हमें 8 लोग जरूर चाहिए। मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मिलेंगे। हमें 8 से भी ज्यादा मिल सकते हैं। और ये काम सभी को 15 दिन में कर लेना है, 15 दिन, ज्यादा नहीं। जिनका योग का चार्ज 4 घंटे तक रहता है वो उसको 8 तक आराम से ले जा सकते। मेहनत 4 घंटे तक है बस। 6 घंटे योग करने वाले कितने चाहिए बोलो? सीमा बहन, आप भी तो उसमें एक होंगे, या 8 घंटे वालों में? सोच लो सभी बहने, हमारी बहुत अच्छी अच्छी पुरुषार्थी बैठी हैं, धुन लगाएंगे। 6 घंटे करने वाले कितने चाहिए? कम से कम 20, और बाकी सब 4 घंटे करने वाले। तो हमारा ये तीव्र पुरुषार्थियों का संगठन संसार में रौनक ला देगा। कल कहीं चर्चा करते हुए एक बात सामने आई, योग की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है ना, हम सब जानते हैं। जितने हमारे ब्राह्मण हैं इस समय 15 लाख से ज्यादा हो गए हैं, अगर थोड़े जो ढीले ढाले हैं उनको भी गिने ना, 16 लाख हो गए हैं। अगर सब ब्राह्मण एक दिन, सोचना आप, 8 घंटे योग कर लें, मान लो बैठा दिया जाए सबको, कमेंट्री दी जाए, पावरफुल 8 घंटे योग करें 16 लाख ब्राह्मण, तो एक ही दिन में क्या हो जाएगा? रमेश, एक ही दिन में चमत्कारिक चेंज, बहुत बड़ी शक्ति है योग की। इसलिए योगी बनना जरूरी है। योगी लाइट हाउस हैं और योगी संसार की सबसे बड़ी ब्यूटी बन जाएंगे, आकर्षण का केंद्र। पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ चमकेंगे, कितने ही पूर्णिमा के चंद्रमा इस संसार में आत्माएं चमकेंगी। मैं बाबा का महावाक्य मुझे याद आ गया, आत्मिक दृष्टि के लिए बहुत सुंदर ये महावाक्य है। जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाएगी, तब संसार की दृष्टि तुम चेतन सितारों की ओर आकर्षित होगी। तो इसको सभी महत्व देंगे। दो प्रैक्टिस और तीन धारणाएं हम निकाल रहे हैं। पहली व्यर्थ से मुक्त, दूसरी बहुत अच्छी प्योरिटी। संसार की सभी इच्छाओं का त्याग, अपने से चिंतन करेंगे। जब संसार छोड़ दिया ना, मन से रहते तो संसार में ही हैं, जब संसार को मन से छोड़ दिया तो फिर उसकी इच्छाओं को रख कर भी क्या करेंगे, मार्ग बदल दिया ना। लक्ष्य है संपूर्ण प्योरिटी की ओर जाना, तो कोई भी इम्प्योर इच्छा की वहां जरूरत ही नहीं। चिंतन करके उन्हें हटाते चलें, कर्मेंद्रियों के रसों को हटाते चलें, तो बहुत अच्छी प्योरिटी। और तीसरी धारणा लेंगे, बहुत सुंदर लक्ष्य बनाएंगे आप करेंगे कि मुझे 15 दिन में अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक ले जाना है। मान लो वो भी आधा ही घंटा है, कम से कम 1 घंटा है, तो मुझे 15 दिन में अपने योग के चार्ट को 4 घंटे तक पहुंचाना है। अपने को चेक करेंगे, मन कहां कहां भटकता है उसको रोकेंगे। क्यों मन आनंद नहीं पा रहा है योग में, इम्पोर्टेंट बात है। योग में मन रस प्राप्त करने लगे, सुख प्राप्त करने लगे, तो योग होगा ही। योग हमें आकर्षित करेगा कि बैठो, छोड़ो ये काम। माताएं जो घरों में रहती हैं, गीत बजा लें, भोजन बन रहा है, अच्छे गीत बजा लें, बाबा के मगन हो के बाबा की याद में भोजन बनाए, 2 घंटे ऐसे ही योग का चार्ट हो जाएगा। करें सभी ये। जो छोटी मोटी चीजें हैं ये उनका त्याग कर देंगे। क्या क्या है वो पता है ना, व्यर्थ की किताबें ज्यादा पढ़ने की रुचि हो, व्यर्थ के सीन टीवी पर देखने की ज्यादा इच्छा हो, इन सब से मुक्त रहेंगे। कुछ चीजें हमें छोड़ के चलनी होती हैं जब हमें योग का रस प्राप्त करना है। तो लक्ष्य की दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्लोगन अपने पास रख लेंगे, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, किसी का कोई दुर्व्यवहार हमें लक्ष्य को भुला न दे। देखो मैं बाबा की एक बात सबको याद दिलाता था, बहुत दिन हो गए हैं, फिर याद दिलाता हूँ वो बात। ऐसी बातें याद रखने से हमें याद आता है हमें क्या करना है। लक्ष्य की दृढ़ स्मृति रहती है। क्या है वो बात? तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी सभी काम निमित्त मात्र हैं। याद आते ही जागृति आ जाएगी ना। बहुत अच्छी मुरलियां हैं बाबा की। ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैलाओ, संसार से माया के जर्म्स कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। उसी में कहा था, तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना, बाकी काम निमित्त मात्र हैं। सेवाएं बाकी निमित्त मात्र हैं। अगर हम बहुत सूक्ष्मता से देखें बाबा के कार्य को, तो ये स्थापना का कार्य संपूर्ण बाबा के द्वारा ही हो रहा है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम सब कह दें हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, बाबा को कह दें, तो स्थापना रुकेगी? स्थापना कर देगा वो। इसलिए हम अपने इस मुख्य कार्य को लक्ष्य बना लें। दूसरा महावाक्य भी याद दिलाऊं जो मुझे बहुत प्रिय लगा, जिसका मैंने अपने अर्ली इयर्स में बहुत आनंद लिया था, साकार मुरली का महावाक्य है, बच्चे तुम देवताओं के साथ भी 2 युग तक रहे, तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी 2500 साल तक देखा, अब भगवान के साथ रहकर देखो। एकदम मन आनंदित होके, मन चाहता है बस तुम्हारे ही साथ रहें, ऊपर नीचे रहकर तो बहुत देख लिया। ऐसी प्रेरक बातें हमारे लक्ष्य को पक्का कराती हैं। ऐसी कुछ बातें हरेक अपने पास नोट करे और इनको याद रखे। एक और महावाक्य जो आप सभी को भली भांति याद है, मैं बहुत सुनाता रहा हूँ, कई साल तक मैं अपनी डायरी के पहले पेज पर उसे लिखता था ताकि डायरी खोलते ही मुझे याद आए, बाबा का महावाक्य है, तुम तो मेरी याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। इसमें आएगा विनाश काल इतना भयानक होगा कि हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, सोचेंगे तो परेशान होंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, सिवाय देखने के कुछ नहीं कर पाएंगे, सबके आंसू भी सूख जाएंगे, रोना भी बंद कर देंगे लोग, मृत्यु इतनी होंगी किस किस के लिए रोएं, ये तो सभी जा रहे हैं, ऐसा हाल हो जाएगा। लेकिन एक मनुष्य के मन की स्थिति डेड हो जाएगी तब, ना वो बुरा सोच पाएंगे ना अच्छा। तो हम बाबा को ऐसा समर्पित कर दें अपने को और सुंदर योग की प्रैक्टिस करें। अब है योग के भिन्न भिन्न अभ्यास, आप अपने अपने ढंग से योग के सुंदर चार्ट बनाएं। जिनको 8 घंटे योग तक पहुंचना है, लक्ष्य बनाएं, इसको हमें कर्म योग करना है, अमृत वेले का परमानंद, मुरली के समय परम सुख, 2 चीजों पर पहले ध्यान देंगे। मुरली सुनने केवल ज्ञान सुनने हम नहीं जाते, लेकिन भगवान हमसे बोलता है, बात करता है, इसका बहुत सुख पाने जाते हैं। आप अभ्यास करना आत्माभिमानी होकर मुरली सुनने का, मैं फरिश्ता हूँ इस नशे में मुरली सुनने का, या बाबा ऊपर से अपनी किरणें मुझे दे रहे हैं इस अभ्यास में मुरली सुनने का, ये 2 चीजें, ताकि 8 बजे तक हम पूरी तरह आनंदित हो जाएं, चार्ज हो जाएं, इसका विशेष लक्ष्य सबको बनाना है। इसके बाद और इससे पहले भी हम अपनी दिनचर्या को 4-4, 3-3 घंटे के रूप में बांट लें। सवेरे उठने से और 8 बजे तक हम ये अभ्यास करेंगे। सब अपनी अपनी प्लानिंग खुद बनाएंगे, मैं केवल इशारा करता हूँ, लेकिन स्वयं अपनी प्लानिंग बनाने से ही ज्यादा सफलता मिलती है। फिर 8 से 12 ये अभ्यास रखने हैं। बहुत सेवा में रहने वाले कार्यों में चले जाएंगे, सेवा में रहेंगे, तो सेवा हमारी केवल सेवा न रहे, 4 घंटे में कम से कम 1 घंटा योग हो जाए, 2 घंटे सवेरे हो जाए, 4 घंटा दोपहर तक, 1 घंटा दोपहर तक हो जाए, फिर 12 से 4 का समय, उसमें किसी रेस्ट भी है बहुत।
शांति
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 शांति,
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सवेरा
चार घंटे में कम से कम एक घंटा योग हो जाए, दो घंटे सवेरे हो जाए, चार घंटा दोपहर तक, एक घंटा दोपहर तक हो जाए, फिर बारह से चार का समय, उसमें किसी रेस्ट भी है, भोजन भी है, कोई एक घंटा रेस्ट करेंगे, कोई डेढ़ करेंगे, इसमें भी थोड़े अभ्यास, भले ये दिन का समय है लेकिन कुछ अभ्यास तो हम कर ही सकते हैं, अच्छे स्वमान का अभ्यास, और कुछ नहीं तो अच्छे स्वमान का अभ्यास, उस गुड फीलिंग में हम रहें, फिर चार से आठ, फिर हम एक डेढ़ घंटा अपना योग अच्छा कर सकते हैं। छह बजे से तो सबको पता ही है, वायुमंडल में ही एक दूसरी चेंज आ जाती है, योग की फीलिंग्स होने लगती है। एक घंटा बैठकर भी करें, बाकी क्रम में डेढ़ घंटे अभ्यास हो सकता है, फिर आठ से सोने तक, दस साढ़े दस ग्यारह जो जब भी सोते हैं, इसमें भी हम कुछ अच्छे अभ्यास करेंगे, और जो इससे ज्यादा अपने योग को बढ़ाना चाहते हैं उनको ऐसी प्लानिंग करनी है, भोजन खाते हम ये अभ्यास करेंगे, पानी पीते हुए ये अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे काम, स्नान करते हुए ये अभ्यास करेंगे। मैं कोई 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 स्नान पे बहुत टाइम लगता है, आधा घंटा एक घंटा लगाने वाले भी हैं कई, तो एक घंटे में अच्छा अभ्यास किया जा सकता है या नहीं है? बाथरूम में चले गए तो बाहर निकलने का नाम नहीं तो अभ्यास कर लें अच्छा, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस को फास्ट कर दें, दूसरों को भी स्नान करना होता है, और किसी के पास बाइक है, बहुतों के पास है ना शांतिवन में भी, बाइक साइकिल चलाते हुए ये अभ्यास करेंगे, फिक्स करें अपना। अब सेवा जो भी जिसकी है, सेवा करते ये अभ्यास करेंगे, अपने अपने फिक्स करो, और वो फिक्स अभ्यास केवल 15 दिन के लिए हो, 15 दिन में उसे चेंज कर देना चाहिए, तब उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। देखो किसी कर्म में मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, लिख लो आप, किसी दूसरे कर्म में मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर हाथों द्वारा काम करा रही हूं, बहुत आता है मुरली में ये अभ्यास। किसी कर्म में आपको इसको फिक्स करेंगे, किसी दूसरे कर्म में मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ। किसी और कर्म में स्वमान के अभ्यास मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ। पूर्वज की फीलिंग भी बहुत सुंदर है। पूर्वज की फीलिंग में याद रखेंगे हमारा हर संकल्प भी संसार की पालना करता है, सब धर्मों की आत्माओं की पालना करता है। किसी कर्म में सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत आनंद आएगा। ऊपर नहीं है, सिर के ऊपर है। किसी कर्म में जब बिल्कुल सरल हो, आप घूम रहे हो, एकांत हो, कर्म भी न हो, थोड़ा समय देकर परम धाम में बाबा से बुद्धि योग जोड़ना। तो किसी कर्म में ये फील करना कि उसकी किरणें आ रही हैं। किसी कर्म में यह अभ्यास करना मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। किसी कर्म में बिल्कुल अभ्यास ले आना ब्रह्मा बाबा को सामने, मैं बाप समान हूँ। जैसे वे महान आत्मा तपस्या कर रही हैं, मैं भी वैसे ही बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा को सामने लाओ। कैसे बाबा? एकदम मगन है, बाबा का चित्र ले आओ, मगन है श्री बाबा में, वैसे ही मैं भी। ऐसे अलग अलग अभ्यास, दो अभ्यास और जोड़ने हैं हमें रोज अपनी प्रैक्टिस में। बहुत सुख मिलेगा उससे। एक, बाबा से रूरिहान, जो जितनी प्यार भरी बातें कर सके। इसमें सोचने की बात नहीं, परम धाम में करें, सुख संवतन में करें, कहाँ करें, किससे करें, ब्रह्मा बाबा से करें या शिव बाबा से करें, किसी से भी कर लो, करो, कहीं भी कर लो, बाबा सामने है वहां कर लो, कुछ न हो तो सुख संवतन में जाकर कर लो। ये सब ज्यादा मन को नहीं भाती, शिव बाबा से कर लो सीधी, किसी से भी करो। दिया तो हमें सब कुछ शिव बाबा ने, पर माध्यम रहे ब्रह्मा बाबा, दोनों को सामने इमर्ज करके कर लें। पर कोई कोई सोचते नहीं, हम तो अकेले शिव बाबा से करेंगे, वो भी कर लें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बाबा से रूरिहान और सच्चे मन से उसे थैंक्स कम से कम एक बार अवश्य, चाहे सवेरे, चाहे सोने से पहले, इवनिंग में, कभी भी याद करो, बाबा आपने हमें क्या क्या दिया। बहुत कुछ मिला है सबको, मिला है या नहीं? कुमार बहुत बैठे हैं, मिला है ना? विचारों का परिवर्तन कर दिया बाबा ने आकर, बुद्धि में बल दे दिया आकर, जीवन जीने की नई राह दिखाई उसने हमें, वो सद्गुरु बनकर हमारा साथी बन गया। याद करें एक एक और थैंक्स देते रहें। 5-7 मिनट लगाएं इसमें, तुमने हमें ये दिया, ये रूढ़िहान भी हो जाएगी और थैंक्स देना भी। बाबा आपने मुझे ये दिया, सद्बुद्धि दी, भक्ति का फल दिया, सत्य ज्ञान दिया, जन्म जन्म की मेरी खोज पूरी कर दी, आप मेरे सद्गुरु बन गए, शक्तियों और वरदानों से मेरी पालना की, मेरी जीवन रूपी नैया के खिवैया बन गए, आप मेरे साथी बन गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान हमारे इतने समीप आ जाएंगे। चिंतन करें क्या क्या मिला, कितनी बार समस्याओं से उसने हमें उबारा, कितनी बार उसकी हमें प्रत्यक्ष मदद मिली। सबके पास है ये, उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए। सुंदर अनुभव हमेशा अपने पास लिख लेने चाहिए। तो रूढ़िहान और बाबा को थैंक्स देना, इससे हमारा मन अनेक संकल्पों से मुक्त होकर बाबा के प्यार में मग्न हो जाता है। सभी इस तरह करके अपने योग अभ्यास को बहुत अच्छा करेंगे ना। अब जब तक बाबा आए, बाबा ने जो हमसे श्रेष्ठ भावना कामना रखी है वो हमें पूरी करनी है। और सबको याद रखना है, बाबा का दिया हुआ काम जो बच्चे करते हैं क्या होगा उनके साथ, भगवान भी उन पर कुर्बान हो जाता है। जे टीचर वो उन्हें बहुत प्यार करता है, सदगुरु बनकर शक्तियां और वरदान देने लगता है। तो हम बाबा की इस मदद का संपूर्ण फायदा उठाएं। तो अगली बार मैं पूछूंगा, अभी हाथ नहीं मैंने उठवाए, अगली बार मैं उठवाऊंगा, 4 घंटे योग किन किन का हो गया, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे। भले एक दूसरे को नहीं देखेंगे, नहीं तो कोई कहेगा देखा योग में तो हाथ उठा दिया, बाकी सारा दिन लड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। ये परिवर्तन तो आया नहीं, योग तो मैं तो हाथ उठा दिया था। लेकिन हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छा योग करने के बाद भी कुछ संस्कार धीरे धीरे ही बदलते हैं। ऐसा नहीं आज किसी ने 8 घंटे योग कर लिया तो वो परफेक्ट हो जाएगा, इतनी सहज यात्रा नहीं है, मंजिल बहुत ऊंची है हमारी। मैं कहता नहीं, नहीं तो सुनने वाले लोग घबरा जाते हैं, परंतु बहुत सुंदर योग बहुत सालों से करने के बाद ही आत्मा सचमुच तृप्त होती है, अंदर से आवाज निकलेगी, पाना था सो पा लिया। इसलिए योग की सुंदर यात्रा शुरू करेंगे और नो कमेंट्स, कमेंट्स दूसरों पर नहीं, कमेंट्स अपने लिए रखने हैं। सबका अपना अपना पार्ट है ना। हम जानते हैं संसार में सभी योगी नहीं बन सकते, चांद भी एक है आकाश में, सूरज भी एक है, सितारे बहुत हैं, उनमें भी चमकदार थोड़े हैं, बाकी अनंत हैं, अनकाउंटेबल। सो हम अपने को महान बनाएंगे, दूसरों पर नजर नहीं, या तो नजर अपने पर या नजर बाबा पर। जो दूसरों पर नजर रखते हैं उनकी नजर बाबा पर कभी नहीं स्थिर होती है। इसलिए बिल्कुल अपने लक्ष्य को महान बना दें, हमें किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, वो तो हमारा काम ही नहीं है। हम तो सोच आए हैं बाबा के पास अपने समीप आने, अपने से मिलने, अपने से दूर निकल गए थे ना, बहुत बाबा के सुंदरतम अनुभव करने, ऐसा लगे बस बाबा है, हमने बाबा कहा और है, उपस्थित है। तो विनाश काल में अच्छी बाबा की प्रेरणाएं टच होंगी, हमारी टचिंग पावर, कैचिंग पावर परफेक्ट हो जाएगी और विनाश काल में ये बात बहुत काम आएगी। जो श्रेष्ठ योगी नहीं होंगे उनका मन भटकेगा विनाश काल में, और बाबा जो उन्हें मदद करेगा वो उसे कैच ही नहीं कर पाएंगे। केवल संकल्पों को कैच करने की बात नहीं, परमात्म मदद को भी कैच करने की जरूरत होगी। उसकी मदद उसके हर बच्चे तक पहुंचेगी, लेकिन जिनका मन भटक रहा होगा वो उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस सुंदर संकल्प के साथ कि आने वाले समय में हम सदा अनुभव करें बाबा से जुड़े हुए हैं, वो हमारा साथी है, हमारा गुड फ्रेंड है, सदा हमें मदद कर रहा है, हमें बचा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय मदद होती है, हमें बहुत मिलेगी। हम अपनी ऐसी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। ओम शांति।